ଗୋପୀଜନ ବଲ୍ଲଭ ଗିରିବର ଧାରି ଗୋପୀଜନ ବଲ୍ଲଭ ଗିରିବର ଧାରି ଯଶୋଦାନନ୍ଦନ ବ୍ରଜଜନ ରଞ୍ଜନ ଯଶୋଦାନନ୍ଦନ ବ୍ରଜଜନ ରଞ୍ଜନ ଯଶୋଦାନନ୍ଦନ ବ୍ରଜଜନ ରଞ୍ଜନ ଯମୁନା ତେରା ବନଚାରୀ ଯମୁନା ତେରା ବନଚାରୀ ଜୟ ରାଧା ମାଧବ କୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ ଜୟ ରାଧା ମାଧବ କୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ ଗୋପୀଜନ ବଲ୍ଲଭ ଗିରିବର ଧାରି ଗୋପୀଜନ ବଲ୍ଲଭ ଗିରିବର ଧାରି ଯଶୋଦାନନ୍ଦନ ବ୍ରଜଜନ ରଞ୍ଜନ ଯଶୋଦାନନ୍ଦନ ବ୍ରଜଜନ ରଞ୍ଜନ ଯଶୋଦାନନ୍ଦନ ବ୍ରଜଜନ ରଞ୍ଜନ ଯମୁନା ତେରା ବନଚାରୀ ଜୟ ରାଧା ମାଧବ କୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ ଜୟ ରାଧା ମାଧବ ରାଧା ମାଧବ ରାଧେ ଜୟ କୃଷ୍ଣ ବଲରାମ କୃଷ୍ଣ ବଲରାମ କୃଷ୍ଣ ବଲରାମ ଜୟ କୃଷ୍ଣ ବଲରାମ जय गौर निताय गौर निताय गौर निताय जय गौर निताय। जय जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा माय। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। जय निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। शील प्रभुपाद की समवेत भक्त वृंद के निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स पदांतिकं। वंदेहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं स्वाद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादन् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमोऽयं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तौ स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वतीदेवे गौरवाणे प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महाबदन्नाय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरातिशे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरे प्रिय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम लोग श्रीमद् भागवत गीता नवम अध्याय श्लोक क्रमांक 16 पाठ करके श्रवण करेंगे और इसके पश्चात आज नेत्रोत्सव भी है और आज जैसे 17 तारीख, आज तो 19 तारीख है, 17 तारीख उड़िया गौड़िया मिलन था। महापुरुष जितना बंगाल से उड़ीसा से जितने भक्त जाएंगे महापुरुष से मिलन के, और काल था झाली समर्पण। महाप्रभु के लिए जो सामग्री ले जाएंगे भक्त, बंगाल के भक्त दमयंती और जो राघव की बहन, जो जो सामान बंगाल के जो भी भक्त कुछ ले जाएंगे वो काल महाप्रभु को समर्पित किया। और आज महाप्रभु सभी भक्तों को लेकर गुंडीचा मार्जन किए। गुंडीचा मार्जन के पश्चात महाप्रभु सब भक्तों को लेकर नेत्रोत्सव का दर्शन करेंगे। तो नेत्रोत्सव का दर्शन महाप्रभु बहुत समय तक, ऐसे नहीं कि एक झलक दर्शन करके, हम लोग जैसे दर्शन करते ऐसे नहीं, मतलब कई घंटा तक महाप्रभु दर्शन करते थे। सुबह से लेकर दोपहर तक महाप्रभु एक टोक दर्शन करते। एक महाप्रभु अपने मदन मोहन, अपना श्याम सुंदर रूप में महाप्रभु जगन्नाथ देव को दर्शन करते थे। तो आज नेत्रोत्सव भी है, आज हम लोग सभी भक्त मिलकर गुंडीचा मार्जन का भी संगमार्जन किए। आज विशेष दिन है, महाप्रभु सब भक्तों को लेकर आज पूरी, आज उसी समय का चिंतन कीजिए कि महाप्रभु आज कितना विरह, कितना दिनों के बाद आज 15 दिन महाप्रभु दर्शन नहीं किए। आलालनाथ में महाप्रभु थे और महाप्रभु निरंतर चिंता, कब मुझे श्याम सुंदर का दर्शन होगा। तो थोड़ा समय गीता के ऊपर स्मरण करेंगे, उसके बाद जो भी जगन्नाथ जी की लीलाएं हैं श्रवण करेंगे। अहम क्रतुर अहम यज्ञ सदा अहम अहम औषधम मंत्र अहम एवाज्यम अहम अग्निर अहम हुतम अहम क्रतुरहम यज्ञ सदा अहम अहम औषधम मंत्र अहम एवाज्यम अहम अग्निरहम हुतम अहम क्रतुरहम यज्ञ सदा अहम अहम औषधम मंत्रहमहमेवाज्यम अहमग्निरहम हुतम।
Thank you.
माताएं अहम क्रतुरहम यज्ञ मंत्रहमहमेवाज्यम अहम ने क्रतु वैदिक अनुष्ठान कर्मकांड अहम मे यज्ञ स्मार्त यज्ञ सदा तर्पण अहम मे औषधम जड़ीबूटी मंत्र दिव्य ध्वनि अहम मे एव निश्चय ही आज्यम घृत अहम मे अग्नि अग्नि अहम मे हूतम आहुति भेट। किंतु मैं ही कर्मकांड श्रील प्रभुपाद के द्वारा अनुवाद और तात्पर्य किंतु मैं ही कर्मकांड मैं ही यज्ञ पितर को दिया जाने वाला तर्पण औषधि दिव्य ध्वनि मंत्र घी अग्नि तथा आहुति हो। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं ज्योतिष्टोम नामक वैदिक यज्ञ भी कृष्ण है। ज्योतिष्टोम नामक वैदिक यज्ञ भी कृष्ण है। स्मृति में वर्णित महायज्ञ भी वही है। पितृलोक को अर्पित तर्पण या पितृलोक को प्रसन्न करने के लिए किया गया यज्ञ जिसे घृत रूप में एक प्रकार को औषधि माना जाता है वो भी कृष्ण ही है। इस संबंध में जिन मंत्रों का उच्चारण किया जाता है वो भी कृष्ण है। यज्ञ में आहुति के लिए प्रयुक्त होने वाली दुग्ध से बनी अनेक वस्तुएं भी कृष्ण है। अग्नि भी कृष्ण है क्योंकि यह अग्नि पांच तत्वों में से एक है, अतः वो कृष्ण की भिन्न शक्ति कही जाती है। दूसरे शब्दों में वेदों के कर्मकांड भाग में प्रतिपादित वैदिक यज्ञ भी पूर्ण रूप से कृष्ण है। अथवा यह कह सकते हैं कि जो लोग कृष्ण की भक्ति में लगे हुए हैं, उनके लिए यह समझना चाहिए कि उन्होंने सारे वेद विहित यज्ञ संपन्न कर लिए हैं। अहम क्रतुरहम यज्ञ सदा अहम अहम औषधम मंत्र अहम अहम एवाज्यम अहम अग्निर अहम हुतम। इसका पहले श्लोक ज्ञान यज्ञेन चापन्य जजंतमा उपासते एकत्वेन पृथक्तेन बहुधा विश्वतो मुखम। ये जो श्लोक है ये श्लोक जो है इसके पहले जो श्लोक है उसको शुद्ध भक्ति कहा गया। सततम कीर्तयन्तमं सततम जो भी है माने मतलब निरंतर कीर्तन जो करते हैं वो अनन्य भक्त है, वो भगवान के प्रिय भक्त है। सततम कीर्तयन्तमं यजना पूर्वजपास सतत कीर्तयम जयजंतस्थ दृढ़व्रता नम संतस्य मांग भक्ता नित्य युक्त उपासते। यहाँ भजन करने वाले दो प्रकार के भक्त हैं, एक तो भगवान के मंत्र उच्चारण करते स्तुति पाठ करते ये एक प्रकार के भजन करने वाले हैं, और एक प्रकार के भक्त हैं जो सेवा करते हैं, जो सेवा करते हैं उसको वो भी एक प्रकार के भजन ही है। तो ये उन्नत भक्त है जो निरंतर भगवान की सेवा में अपने मन को लगा कर रखते हैं, ये अनन्य भक्त है, इसका बराबरी कोई नहीं है। इसके बाद भगवान कहते कि ज्ञान यज्ञेन चापन्य उन्य ज्ञान यज्ञ के द्वारा भी मेरी उपासना करते हैं। वो ज्ञान यज्ञ कैसे है, एकत्वेन पृथक्तेन और बहुधा विश्वतो मुखम। एकत्वेन मतलब अहंग्रह उपासना, पृथक तो है ना, मतलब प्रतिको प्रतिको उपासना, और विश्वतो मुखम बहुधा और विश्वतो मुखम माने विश्व रूप की उपासना, व्यापकता में सब कुछ भगवान को दर्शन करते। तो अनन्य जो भक्त है इससे निम्न है जो चार प्रकार के अर्थ अर्थार्थ जिज्ञासु ज्ञानी, ये निम्न कोटि के हैं क्योंकि इसमें कुछ कामना है, किंतु शुद्ध भक्त में कोई कामना नहीं है। जो अनन्य भक्त होते हैं उसमें कोई कामना का लेस भी नहीं है, किंतु जो उस आर्त अर्थार्थ जिज्ञास और ज्ञाने इसमें कामना है, इसलिए ये थोड़ा सा निम्न कोटि के है। इससे भी निम्न कोटि के है जो अहम ग्रह उपासना, प्रतीक उपासना और विश्वतो मुखम सर्वत्र भगवान के दर्शन करना, ये निम्न कोटि के उपासक माना गया। तो आज के जो श्लोक है, एकोत्तेन पृथक्तेन बहुधा विश्वतो मुखम, अहम ग्रह उपासना मतलब मैं जो हूँ, मतलब मैं और आप में कोई भेद नहीं है, अहम और जो भगवान है एक है, मैं जो हूँ वही आप है और मैं वहाँ जो मैं हूँ वही आप यह है, मतलब मैं और आप में कोई भेद नहीं, अभेद दर्शन। और अहम ग्रह उपासना, आप प्रतीक उपासना बा पृथक उपासना क्या है, विभिन्न देव देवियों में भिन्न भिन्न देव देवियों की उपासना, इसमें भी कुछ चैतन्य चिन्मयता है। देखिए जो ब्रह्म उपासना ये श्रेष्ठ है, जो प्रतीक उपासना से भी श्रेष्ठ है ब्रह्म उपासना। ब्रह्म उपासना खुद को ब्रह्म मान लेते धीरे धीरे से ये शुद्ध हो जाएंगे। फिर देव उपासना, देव देवियों में एक एक देवी को उपासना करते हैं, इस सूर्य चंद्र वरुण एक एक देव देवता को उपासना करते हैं, ये प्रतीक उपासना। और विश्वतो मुखम, कोई ठीक नहीं है, सब भगवान स्वरूप है, भगवत स्वरूप है, किसी की उपासना नहीं करनी है, इतनी ज्ञान है कि सब भगवतमय है, किसी की उपासना नहीं करनी है, ये इनका एक ज्ञान हो गया। तो इससे श्रेष्ठ है प्रतीक उपासना, प्रतीक उपासना से श्रेष्ठ है ब्रह्म उपासना व अहम ग्रह उपासना। तो आज के जो श्लोक है, अहम क्रतुरहम यज्ञ, यह अहम शब्द 8 बार लिया गया, 8 बार, कितना बार, अहम क्रतुरहम यज्ञ सधाम अहम अहम औषधम मंत्र अहम अहम एवाज्यम अहम अग्निर अहम हुतम, 8 बार अहम शब्द का भगवान ने उच्चारण किया, मैं हूँ, मैं सब कुछ हूँ। जो वैदिक रीति से किया जाए वो क्रोतु होता है, जो वैदिक रीति से किया जाता है उसको क्रोतु कहते हैं, और स्मार्त मत में भी जो कुछ किया जाता है उसको भी यज्ञ कहा जाता है, क्रोतु मतलब यज्ञ। जिसकी पंच महायज्ञ आदि स्मार्त कर्म कहते हैं वो यज्ञ भी मैं हूं। पितरों के लिए जो कुछ जो अन्न अर्पित किया जाता है उसको सधा कहते हैं, पितरों के लिए जो कुछ अन्न दिया जाता है उसको सधा कहते हैं, वो सधा भी मैं ही हूं। उन क्रोतु यज्ञ और सधा के लिए आवश्यक जो साकल्य अर्थात जो वनस्पतियां औषधियां दी जाती है वो भी मैं ही हूं, जड़ी बूटी मैं ही हूं। मंत्र अहम अहम एवाज्यम, उसके लिए जो मंत्र उच्चारण किया जाता है वो भी मैं ही हूं। जिस मंत्र से क्रतु यज्ञ और सधा किए जाते हैं वो मंत्र भी मैं ही हूं। यज्ञ आदि के लिए गो घृत आवश्यक होता है वो भी मैं ही हूं। और अग्नि जो है 5 तत्वों में जो है अग्नि वो भी मैं ही हूं। और हवन करने की क्रिया भी मैं ही हूँ। तो प्रभुपाद जी यहाँ लिखते हैं कि ये जो जो भी कुछ संसार में जो कुछ दर्शन करते ये सब मैं ही हूँ। तो आज अहम क्रतुर अहम यज्ञ, ये अनन गीता में 3 चीज की चर्चा है, एक गुह्य ज्ञान, एक गुह्यतर ज्ञान और एक गुह्यतम ज्ञान। गुह्य ज्ञान क्या है, शरीर और पदार्थ के जो विचार है, जो ज्ञान है, शरीर और आत्मा मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। ये जो शारीरिक जो ज्ञान 24 तत्व का जो ज्ञान है, ये है 25वां तत्व, ये है गुह्य ज्ञान, देह और आत्मा। और गुह्यतर ज्ञान क्या है, मतलब भक्ति है किंतु पूर्ण शुद्ध भक्ति नहीं है। सप्तम और अष्टम अध्याय जो है, दूसरा तीसरा अध्याय जो ज्ञान चर्चित चर्चा हुई है वो है गुह्य ज्ञान। सप्तम और अष्टम अध्याय में जो ज्ञान है भगवान ने जो दिए है वो है गुह्यतर ज्ञान। वहाँ शुद्ध भक्ति नहीं है, सामान्य भक्ति की बात, गुणी भक्ति की बात कही गई है। गुणी भक्ति मतलब त्रिगुण से युक्त है, उसमें सत्य रज और तम मिलावट है, गुणीभूता भक्ति कहते हैं। और अनन्य भक्ति नवम अध्याय में शुद्ध भक्ति जिसको कहते हैं कि सततम कीर्तयन्तमं जतन्तस्य दृढ़व्रता, ये अनन्य भक्ति का लक्षण है। सततम निरंतर 24 घंटा नाम कीर्तन करते हैं। सततम कीर्तयन्तमं जतन्तस्य दृढ़व्रता नमस्यन्तस्य मां भक्ता नित्य युक्त उपासते। तो सभी लोग ये नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हम सब में कुछ पाप, शारीरिक मानसिक और वाचिक पाप हो जाता है। शारीरिक मानसिक और वाचिक, मानसिक पाप जो है वो नष्ट होता है स्मरण से। भगवत लीला स्मरण कर रहे, मानसिक पाप नष्ट हो जाएगा। वाचिक जो पाप होता है वो भगवान के नाम गुण कीर्तन करने से वाचिक पाप चला जाता है। और जो शारीरिक पाप है, शरीर से दूसरे के जो पाप अन्न खाया हो, उस पाप से जो शरीर की जो रक्त जो खून बनी है, वो पाप कैसे जाएगा, भगवत सेवा से। निरंतर भगवान की सेवा, जो परिक्रमा वा कोई शारीरिक सेवा, इतनी शारीरिक सेवा हो जिसे सोने के बाद 2 सेकंड 10 सेकंड में नींद आ जाए। हाँ, भगवत स्मरण करते हुए क्षण भर में शरीर में नींद आ जाए, इतनी थकावट हो, इतनी शरीर में मतलब भगवत सेवा में इतनी तल्लीन हो कि उनका तुरंत नींद आ जाए। हाँ, और ठीक समय पूरा होने के बाद, नींद पूरा होने के बाद फिर भगवान नाम कीर्तन के लिए जाग जाए। शारीरिक पाप जाता है एकमात्र सेवा के माध्यम से। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु गुंडीचा मार्जन का साक्षात प्रभु, उसके गुंडीचा मार्जन करने कोई आवश्यकता नहीं थी, कोई प्रयोजन नहीं था, किंतु महाप्रभु ने करके दिखाया कि अपने आचार्य धर्म जगत सिखामो, अपने आचार्य धर्म जगत जीवेर सिखाए, जगत को सिखाना है, समस्त मनुष्य को शिक्षा देना है स्वयं आचरण करके। तो इसलिए महाप्रभु साक्षात स्वयं श्री कृष्ण, आज महाप्रभु अपने हाथ से जगन्नाथ जो गुंडीचा महारानी की जो मंदिर है, आज अपने हाथ से स्वयं मार्जन कर रहे हैं। महाप्रभु सुबह कथा में सुने होंगे कि ये जो मार्जन लीला है ये अंतकरण की शुद्धि, एक बाहरी शुद्धि एक अंतकरण की शुद्धि। बाहरी शुद्धि तो हम लोग स्नान आदि करके पवित्र वस्त्र धारण करके बाहर की शुद्धि हो जाती है, किंतु अंतकरण की शुद्धि होती है भगवत सेवा से, भगवान नाम कीर्तन से। तो इसलिए महाप्रभु ने अंतकरण चेत दर्पण मार्जनम वो करके दिखाया कि मार्जन सेवा जो है ये बहुत महत्वपूर्ण सेवा है। हमारे बहुत आचार्यों ने जो सेमादास जो निधुवन की झाड़ू बुहारी लगाते थे, क्या नाम, सेम सेम सेमानंद प्रभु, वेरी गुड, सेमानंद प्रभु रोज बुहारी लगाते थे, निधुवन की सेवा कर सेवा कुंज की सेवा करते थे, और सेवा करते करते राधारानी की नुपुर प्राप्त किए, और प्राप्त किए श्रीमती स्वयं राधारानी की नुपुर है। ये जो छोटी छोटी जो सेवा है ये भगवान की सेवा है, इसी सोच कर करना चाहिए। कोई भगवान की सेवा में कोई छोटी बड़ी नहीं है। हाँ, सब साक्षात श्रीजी ग्रहण कर रहे हैं, श्रीजी सेवा के अधिकारिणी है, सबको सेवा देती है। तो महाप्रभु स्वयं गुंडीचा मार्जन किए, गुंडीचा महारानी की जो मंदिर है उसका मार्जन किए और अच्छा से पूरा दो बार झाड़ू, उसके बाद पानी से अच्छा से साफ किए। उसके बाद महाप्रभु बहुत सारी लीलाएं हैं। महाप्रभु आखिरी में सब भक्तों को अपने हाथ से प्रसाद परिवेशन करेंगे और वही प्रसाद सब भक्तों को पवा के स्वयं प्राप्त करेंगे। तो महाप्रभु इससे एक विशेष शिक्षा कि हृदय मंदिर में अगर भगवान को स्थापित करना है तो प्रथम पहले हृदय को साफ करना पड़ेगा। हृदय साफ होता है शारीरिक सेवा से, निरंतर प्रभु के नाम कीर्तन ये भी सेवा है, ये भी सेवा से बाहर नहीं है। तो नाम कीर्तन सेवा जो है ये से अंतकरण की सफाई होती है। तो महाप्रभु उसके बाद महाप्रभु जाएंगे, ये जो लीला है, ये जो मार्जन, जो गुंडीचा जो मार्जन जो लीला है, ये साधारण लोग के समझ से बाहर है। वो लोग सोचते हैं क्या है, किंतु जिसके अंदर भक्ति है, जिसके अंदर भक्ति महारानी है, वो इसकी महिमा जानते हैं कि साक्षात ये ठाकुर जी की सेवा है। ये अंतकरण की सफाई की सबसे बड़ी सेवा है कि सबसे छोटी से छोटी सेवा करनी है। ये सेवा बहुत महत्वपूर्ण है, महाप्रभु ये करके दिखाया। प्रताप रुद्र राजा को महाप्रभु दर्शन नहीं देंगे। महाप्रभु कहे कि सभी भक्तों ने प्रार्थना की, प्रभु इनको आप दर्शन दीजिए। कहे कि नहीं, उनका जो राजा नाम है, राजा नाम से उनका कोई दोष नहीं, उनका एक ही दोष है कि उनका राजा है, वो राजा है। अगर राजा से सन्यासी दर्शन करे तो सारे दुनिया बदनामी करेंगे, तो इसलिए मैं दर्शन नहीं देंगे। तो आखिरी समय नित्यानंद प्रभु महाप्रभु की जो एक उत्तरीय वस्त्र मांग के लिए कि वो प्राण नहीं रक्षा कर पाएंगे प्रताप रुद्र बिना महाप्रभु के दर्शन के बिना, तो कहे महाप्रभु आप अपना एक बहिर्वस्त्र दे दीजिए जिसको मैं प्रताप रुद्र राजा को दे सके। तो महाप्रभु को एक बहिर्वस्त्र दे दिया। फिर आखिरी समय महाप्रभु कहे कि उनका जो पुत्र है वो पुत्र को मुझे दर्शन करा सकते हैं। तो महाप्रभु उनका पुत्र का दर्शन किए, दर्शन के पश्चात महाप्रभु उनका आलिंगन भी किए। अब आलिंगन के पश्चात जब वही बालक जब प्रताप रुद्र महाराज के पास जाते हैं, प्रताप रुद्र महाराज आलिंगन करेंगे, आलिंगन करके महाप्रभु का सुख प्राप्त करेंगे। आप देखिए जब आखिरी शेष महाप्रभु की जो महाप्रभु दर्शन देंगे, आखिरी समय महाप्रभु जब जगन्नाथ वल्लभ गार्डन में महाप्रभु कीर्तन करते हुए वहाँ विश्राम करेंगे, रेस्ट करेंगे, तो उस समय सार्वभौम प्रभु कहे, भट्टाचार्य कहे कि आप इस समय जाकर गोपी गीत का गायन करें। तब कथामृतम तप्त जीवनम। तो महाप्रभु उस समय तो अंतरदशा में थे, उनका कोई होश नहीं था, वो कौन सुना रहे इतना सुंदर शब्द, इतना महिमा गोपीजनों की जो वार्ता है, तो सुनकर महाप्रभु उसको आलिंगन प्रदान करेंगे। तो राजा होकर आज भी जगन्नाथ जी की जो रथ यात्रा होती है, सबसे पहले राजा झाड़ू लगाते हैं, उसके बाद रथ यात्रा शुरू होते हैं। तो आज रथ यात्रा, फिर महाप्रभु नेत्र दर्शन के लिए जाएंगे कि इतना 15 दिन के बाद महाप्रभु जो स्नान यात्रा के बाद 15 दिन महाप्रभु दर्शन नहीं देंगे। जगन्नाथ प्रभु साक्षात प्रभु दर्शन किसी को नहीं दिए। तो उस समय महाप्रभु दर्शन के लिए सभी भक्तों को लेकर जाएंगे। कबीरराज गोस्वामी भाषा में हम लोग श्रवण करते क्या क्या कबीरराज गोस्वामी ने लिखे हैं नेत्रोत्सव के बारे में। फिर जगन्नाथ जी की लीला भी श्रवण देखते हैं कितना समय है। तो महाप्रभु के सबसे प्रिय था जगन्नाथ स्वामी का सबसे प्रिय गीत गोविंद था। सब समय गीत गोविंद सुनना चाहते थे। गीत गोविंद कैसे रचना हुई है जानते? गीत गोविंद एक ब्राह्मण था, एक ब्राह्मण ब्राह्मण ब्राह्मणी दोनों के कोई संतान नहीं हुए, तो महाप्रभु दोनों पति पत्नी गए जगन्नाथ प्रभु के पास कि प्रभु मुझे कोई संतान दीजिए जो आपकी सेवा में लागे। तो कुछ दिनों के बाद जब प्रार्थना करके लौट कर आए तो एक कन्या प्राप्त किए, तो कन्या प्राप्त किए तो कुछ दिन जब कन्या बड़ी हुई तो फिर लेकर गए कि प्रभु ये आपकी सेवा में। तो जगन्नाथ जी बोले एक लेकर क्या करेंगे, हाँ तो राज सपना दिए कि हमारे एक भक्त है जयदेव, आप उनको दे दीजिए। ऐसे स्थान निर्देश कर दिया, स्थान है इसी पेड़ के नीचे बैठकर जयदेव कुछ अपना साधन कर रहे, उनके हाथ में समर्पण कर दीजिए। जब गए पति पत्नी लेकर अपनी कन्या पद्मावती को लेकर गए, जाने के बाद कहे कि जगन्नाथ प्रभु का आदेश है, ये कन्या को आप रख लीजिए, आपके हाथ में समर्पण करने के लिए कहा है। तो जयदेव ने कहा कि मैं तो गरीब ब्राह्मण हो, मेरे पास तो कुछ है नहीं और मैं विरक्त हो, पत्नी की क्या आवश्यकता है, कोई आवश्यकता नहीं, अब ले जाइए। उन्होंने बहुत आग्रह किए कि जगन्नाथ प्रभु का आदेश है, आपको स्वीकार करना है, तो ही राख के चला गया उनका बिना बिना इच्छा से, उनका इच्छा, मतलब जयदेव की इच्छा नहीं थी, जोर करके वहीं छोड़ के चले गए। तो क्या करें, जयदेव गोस्वामी ने पत्नी को स्वीकार किए और रोज अपना जो क्रियाकर्म जो नित्य कर्म गीत गोविंद रोज लिखते थे। लिखने के पश्चात कहे कि एक दिन मन चिंता किए कि मैं कैसे लिखूं कि राधारानी चरण, भगवान कृष्ण स्वयं कह रहे कि राधारानी के राधारानी से कि आपका चरण मेरे सिर पर राख दीजिए, किंतु ये शब्द को लिखने में हिम्मत नहीं हो रहे जयदेव गोस्वामी को कि राधारानी के चरण श्याम सुंदर के सिर पर कैसे रखे। तो पद्मावती अपनी जो धर्म पत्नी से कहें कि आप रसोई करें, मैं थोड़ा सा नहा करके आता हूँ, उसके बाद प्रसाद सेवन करेंगे। और उसी बीच में ठाकुर जी स्वयं ठाकुर जी आकर कहे कि कहाँ, मतलब जानते थे पति का वेश धारण करके आए और आकर बोले तुरंत प्रसाद दो, प्रसाद पाए, प्रसाद के फिर उनका जो कॉपी था कॉपी भी राइट किए, दही पद पल्लव मुदारम इस शब्द को भी लिख दिए। लिखने के पश्चात प्रसाद सेवन किए, सेवन करके पद्मावती भी प्रसाद पा लिए। उसके बाद वही जयदेव गोस्वामी स्नान करते करते चिंतन करते करते आ रहे हैं घर पर कि क्या करूँ, क्या कैसे लिखूँ। तो देखे उस समय पद्मावती प्रसाद सेवन कर रहे, बोले ऐसे कैसे हो सकते हैं, बिना पति के प्रसाद पावा के अपने खुद प्रसाद पा रहे। तो आश्चर्यचकित हो गए, कहे कि पद्मावती क्या कारण है, आज पहले प्रसाद पा रहे हम मुझे प्रसाद ना देकर। तो कहे कि प्रभु आप तो प्रसाद स्वीकार किए, आपको प्रसाद पाकर आपको शयन कराकर मैं स्वयं प्रसाद प्राप्त कर रही है। कहे कि नहीं, बोले देखिए आपने जो कॉपी में कुछ लिखे हैं वो कॉपी भी दिखाया, बोले तो ये तो साक्षात ठाकुर जी है। तो पत्नी का झूठन भी जयदेव ने स्वीकार किए, पत्नी जो प्रसाद पा रहे थे कि बोले साक्षात प्रभु का प्रसाद है, ये कोई साधारण कोई नहीं थे, जो लिख कर गए वो साक्षात श्री कृष्ण ही थे, साक्षात जगन्नाथ ही थे, तो वो प्रसाद स्वयं प्राप्त किए। फिर एक और घटना है, एक बार एक बैगन का खेती है, बैगन जानते बैगन, बैगन का खेती में एक बालिका गीत गोविंद गा रही थी, तो गाते गाते बहुत अच्छा, जगन्नाथ जी का सबसे प्रिय है गीत गोविंद, किसी को जगन्नाथ जी को खुशी करना है, उसका सुख पहुँचाना है तो रोज एक पद एक चार लाइन पढ़ के सुनाना, ज़्यादा नहीं, ऐसे एक एक 24 पद है, 24 है उसमें एक में 8 स्टेंजा है, 8 स्तवक है, तो एक स्तवक का आप 8 दिन में सुनाएं, ऐसे नहीं कि रोज एक एक सुनाना है। तो ऐसे आप सुना सुना तो देखना आप जगन्नाथ जी रिझ जाएंगे, जगन्नाथ जी के आंखों में मतलब जो प्रेम बारी प्रेम झलक आपको दर्शन करने को मिलेगा। हाँ, दौड़ने से ज्यादा दौड़ा दौड़ी ज्यादा मतलब घूमने से दर्शन नहीं होता है। मन को एक जगह स्थिर करना है, जब तक मन स्थिर नहीं हो तब तक भगवत दर्शन नहीं होता है। हमारा मन अस्थिर है, मन में चंचलता है, मन में स्थिरता नहीं है, इसलिए भगवत दर्शन में व्यघात होता है। महाप्रभु साक्षात एक टुक दर्शन करे जगन्नाथ जी को और एक बुढ़िया आकर महाप्रभु के कान पर चढ़ गई। सब लोग कह रहे कि साक्षात प्रभु इनके सिर पर कान पर क्यों चढ़ रही है, तो उसका भी होश नहीं किस पर चढ़ रहे। वो गरुड़ खंभे पर महाप्रभु के कांधे पर चढ़कर दर्शन करे। महाप्रभु सबको निषेध कर रहे कि नहीं, इसको उतारना मत, इसको यही रहने दीजिए, इसको दर्शन करने दीजिए। महाप्रभु रोते हुए कहे, इनका जो भगवत दर्शन की जो व्याकुलता है वो व्याकुलता मेरे अंदर नहीं है। महाप्रभु साक्षात कहे कि ये जो बुढ़िया के अंदर जो व्याकुलता है, क्योंकि भगवत दर्शन में सबसे बड़ी चीज है व्याकुलता, जो छटपटाहट कि प्रभु का इतना दिन हो गया, आज तक प्रभु का कोई दर्शन कोई अनुभव कुछ भी नहीं है, मेरा जीवन रखने की क्या आवश्यकता है, ये जीवन धिक्कार है, ये जीवन से कोई मतलब ही नहीं है, ये शुद्ध केवल अपने इंद्र तृप्ति के लिए जी रहे हैं, अपने सुख के लिए जी रहे हैं, ये प्रभु के सुख के लिए नहीं जी रहे हैं। तो इसलिए इस शरीर को रखने की कोई आवश्यकता नहीं। महाप्रभु स्वयं रोते हुए वो आपने देखे, जब जगन्नाथपुरी जाएंगे उनकी बाँ हाथ का 5 अंगुली है और महाप्रभु वहीं से दर्शन करते थे। तो महाप्रभु और महाप्रभु गोविंद गीत गोविंद बहुत प्रिय। महाप्रभु जो चादर ओढ़ते वो चादर में भी गीत गोविंद लिखा रहते हैं। उनका जो चादर है वो चादर को लिपटे रहते हैं कि उसमें सुख मिलता है, उसमें शीतलता मिलती है। तो इसीलिए गीत गोविंद बहुत प्रिय है जगन्नाथ जी का। अगर समय किसी को मिले तो एक दो, ज़्यादा नहीं, एक दो लाइन रोज स्मरण करें। तो महाप्रभु नेत्रोत्सव जब दर्शन कर रहे हैं तब कबीराज गोस्वामी क्या लिखते हैं, ऐसे बहुत सारी लीला है। जो देख, एक भक्त था उनका नाम बंधु महांति। देखिए कबीराज गोस्वामी लिखते हैं, बड़ा सुंदर भाव है, क्योंकि एक जो आंखों में दर्शन नहीं किए कभी, जिस समय इस ग्रंथ को लिखन किए उस समय उनकी क्या स्थिति थी, ना आंखों में देखते हैं ना कान में सुनते हैं, अब बहुत वृद्धा मैंने 100 से अधिक वयस हो गया, शरीर में प्राण मतलब जस्ट प्रभु की इच्छा से चल रहे, अपने कोई इच्छा नहीं है। कृष्णदास कबीराज गोस्वामी की जो उन्होंने खुद लिखे हैं, आमी वृद्ध जरा तोर लिखी थे कापय कर, ना देखे नयने ना सुने सवने, तबु लिखी एवड विस्मय, कि अद्भुत चैतन्य चरित, कृष्ण उपजीवे प्रीति बुझीबे रसे रीति, सुनिले हाई बड़ हित। अगर इस चैतन्य चरित में तो रोज नित्य सेवन करे उसका कल्याण होके रहेगा। तो इसलिए ये जो शब्द है कबीराज गोस्वामी का शब्द है। आर दिने जगन्नाथेर नेत्रोत्सव नाम, आर दिने जगन्नाथेर नेत्रोत्सव नाम, महोत्सव हईल भक्तेर प्राण समान, महोत्सव हईल भक्तेर प्राण समान। आज प्राण के समान महसूस है कि आज प्रभु का दर्शन मिलेगा। ये जो प्रभु का दर्शन मिलता है, हम लोग तो बहुत मैंने हल्कापन से दर्शन करते हैं। जब भारीपन से दर्शन करेंगे बहुत डीपली तो आपको आंसू आए बिना रहे मतलब रह नहीं सकते, मतलब आपको बहुत पीड़ा होगा कि ऐसे रूप कभी आंखों से ना मिट जाए, निरंतर इसी रूप झलकते रहे। तो आर दिने जगन्नाथेर नेत्रोत्सव नाम, महोत्सव होइल भक्तेर प्राण समान, पक्ष दिन दुखी लोग, पक्ष दिन मैंने 15 दिन से दुखी है, पक्ष मैंने दुई पक्ष, एक दुई पक्ष होते ना, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, दुई इसलिए लिख रहे, पक्ष दिन दुखी लोग, প্রভুর দর্শনে দর্শন করিয়া লোক সুখ পাইলা মানে আজ দর্শন করকে বহুত মন মে সুখ প্রাপ্ত হো রহে হ্যাঁ কি আজ প্রভু কা মুঝে দর্শন মিলা। মহাপ্রভু সুখে লইয়া সব ভক্তগণ, মহাপ্রভু সব ভক্ত লইয়া সুখে লইয়া সব ভক্তগণ জগন্নাথ দর্শনে করিলা গমন। মহাপ্রভু স্বয়ং সব ভক্ত লেকর যা রে জগন্নাথ দর্শন কে লিয়ে। আগে কাশীশ্বর যায় লোক নিবারিয়া, আগে কাশীশ্বর পণ্ডিত যা রে লোক ভিড় কো হটারে, পাছে গোবিন্দ যায় জল করঙ্গ লইয়া। কোন যারে গোবিন্দ, মহাপ্রভু যাহা যা যাতে থে মহাপ্রভু কে লিয়ে গোবিন্দ পাত্র মে পানি লে যাতে থে। যা মহাপ্রভু মন্দির প্রবেশ করতে থে পহলে হাত পের ধোতে থে, ইসলিয়ে মন্দির মে কবি ভি আহে দূর সে কম পের ধোনা চাহিয়ে। কহাঁ কহাঁ সে পের রাখা হ্যায় কই ঠিক নেই, তো ইসলিয়ে কম সে কম হাত পের মহাপ্রভু যাবি জগন্নাথ মন্দির মে যাতে থে হাত পের ধোতে। আজ ভি জগন্নাথ মন্দির প্রবেশ কে সময় সবকা আপনে আপ পের ধো যাতে ধুল দে, মানে পানি এসে সিস্টেম করকে রাখা কই ভি যায় উসকা পের ধুল জায়গা। তো ইসলিয়ে কই বাহার যো আমারে ভক্ত হ্যায় মন্দির প্রবেশ করতে সময় পের কো ধোয়ে হাত কো ধোয়ে। আগে কাশীশ্বর যাই লোক নিবারিয়া, পাছে গোবিন্দ যাই জল করঙ্গ লইয়া। মহাপ্রভু যাতে সময় গোবিন্দ হাত মে পানি লেকর যাতে থে। প্রভুর আগে পুরী ভারতী দুহার গমন, স্বরূপ অদ্বৈত দুহার পার্শ্বে দুইজন। পুরী ভারতী মহাপ্রভু পাশ পাশ চল রে, পাছে পাছে চলে যায় আর ভক্তগণ, উৎকণ্ঠাতে গেলা সব জগন্নাথ ভবন। সব উৎকণ্ঠা, এই সবসে বড় চৈতন্য চরিতামৃত এক শব্দ আপনাকে মিলেগা কি মহাপ্রভু যে ব্যাকুলতা যে উৎকণ্ঠা যে ছটপটা হট ভগবত দর্শন কে লিয়ে, এসে সে ইসকো সবসে উঁচা গ্রন্থ কহা গিয়া, সবসে শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ হ্যায়, সবসে যো ভগবত প্রাপ্তি করানে কে যে গ্রন্থ হ্যায় চৈতন্য চরিতামৃত হ্যায়। ইসকো আপ আগর ধ্যান সে শ্রবণ করেঙ্গে তো বহুত হৃদয় মে পীড়া হোগে, হৃদয় মে বহুত দুঃখ পৌঁছেগা কি রাখ নেই পায়েঙ্গে, ইতনা কষ্ট হতা হ্যায়। পাছে পাছে চলে যায় আর ভক্তগণ, উৎকণ্ঠাতে গেলা সব জগন্নাথ ভবন। দর্শন লোভেতে করি মর্যাদা লঙ্ঘন, ভোগ মণ্ডপে যায়া করে শ্রীমুখ দর্শন। মহাপ্রভু ভোগ মণ্ডপ, মহা যো পুরী মন্দির মে এক তো মন্দির কে মণ্ডপ হ্যায় যাহা ঠাকুরজি বিরাজমান হ্যায় রত্ন মণ্ডপ, উসকে বীচ মে যাহা নৃত্য কীর্তন হতা হ্যায় উসকো কহতে জগমোহন মণ্ডপ, এসে কুছ নাম হ্যায়। ফির ভোগ মণ্ডপ, উনকা তিন মণ্ডপ হতা হ্যায় যাহা ভোগ অফার হতা হ্যায়, দূর সে ভোগ অর্পণ হতা হ্যায়। হ্যাঁ মুক্তি মণ্ডপ, বীচ বালা, বীচ বালা কহতে যাহা নৃত্য কীর্তন হতা হ্যায়, এক মুক্তি মণ্ডপ, এক রত্ন মণ্ডপ, এক ভোগ মণ্ডপ, এসে কুছ। তো দর্শ তৃষার্ত প্রভুর নেত্র ভ্রমর যুগল, গাঢ় তৃষ্ণায় পিয়ে কৃষ্ণের বদন কমল। তৃষার্ত প্রভুর নেত্র, প্রভুর নেত্র যো হ্যায় বহুত তৃষার, তৃষার্থ মিস বহুত বহুত দিনকে বাদ জেসে দর্শন করে, বহুত দিনকে বাদ কই কিসিকে ভুক জেসে লাগতা হ্যায়, ভুক কিসিকে ভুক লাগা হো আর বহুত দিনকে বাদ কুছ মিলা হো তো কেসে পাতে, আরে পাও জলদি জলদি পাও, হ্যাঁ কুছ দেখো মত ক্যা মিলে না মিলে, হ্যাঁ কিন্তু ভুক কি জ্বালা এত জ্বালা হতি হ্যায়। ইসি প্রকার মহাপ্রভু ইসে দর্শন করে কি পনেরো দিনকে বাদ আজ জগন্নাথ প্রভু কা দর্শন হো রায়, কিস প্রকার সে দর্শন করনা হ্যায়, আঁখো কা যো পলক হ্যায় ও পলক কবি ঝপনে নেই দেতে কি না ঝপকে দর্শনে ব্যাঘাত না হো। তৃষার্ত প্রভুর নেত্র ভ্রমর যুগল, গাঢ় তৃষ্ণায় পিয়ে কৃষ্ণের বদন কমল। গাঢ় তৃষ্ণাকে সে বদন কমল পিই রহে, পিই রহে দর্শন নেই করে, ক্যা করে পিই রে, পিই রে মতলব মানে অত্যন্ত গাঢ় লালসা, অত্যন্ত লালসা দর্শন কি এ সূচিত করে। প্রফুল্ল कमल जिनी नयन जुगल नीलमणि दर्पण कांति गंड झलमल। प्रभु श्री वदन का दर्शन कर मैंने वर्णन हो रहा है। प्रफुल्ल कमल जिनी नयन जुगल, प्रभुर नयन जुगल बहुत प्रफुल्ल है। नीलमणि दर्पण कांति गंड झलमल बांधुलिर फूल जेनी अधर सुरंग ईसत हासित कांति अमृत तरंग। बांधुलिर फूल जेनी माने एक एक फूल है जिसका फूल का प्रभु के अंग के साथ वर्णन कर रहे हैं। ईसत हसित कांति अमृत तरंग श्री मुख सुंदर कांति बाड़े छने छने। श्री मुख सुंदर कांति बाड़े छने छने कोटि भक्त नेत्र भृंग करे मधुपाने। श्री मुख सुंदर कांति बाड़े छने छने छन छन में रूप बदल रहे हैं और प्रभु से रूप को उस रूप को पान कर रहे हैं। नेत्र भृंग करे मधुपाने जत पिए तत तृष्णा बाड़े निरंतर। जितना पी रहे उतना तृष्णा बढ़ रहे हैं। एक बार पीने के दर्शन करने के बाद जैसे लग रहा है कि पिया ही नहीं, फिर दर्शन कर रहे हैं, फिर दर्शन कर रहे हैं, फिर दर्शन कर रहे हैं। ऐसे में कोलकाता के एक भक्त को देखा था, मतलब दर्शन कर रहे फिर जा रहे दस मैंने और 20 कदम जा रहे फिर दर्शन कर रहे फिर जा रहे फिर जा रहे। इस प्रकार से कम से कम 20-25 बार उनका ऐसे दर्शन होता था। मैंने जा रहे आ रहे जा रहे, मतलब दर्शन जैसे उनका कम पड़ रहा है किंतु मजबूरी से जाना पड़ रहा है, किंतु जैसे बहुत दूर चले जाएंगे फिर आएंगे, बहुत दूर चले जाएंगे फिर आएंगे, बहुत दूर चले जाएंगे फिर आएंगे, जगन्नाथ जी का दर्शन करके। इस प्रकार से ऐसे ऐसे भक्त भी है हमारे भक्त समाज में जिसका दर्शन के भी बड़े लालसा है कि दर्शन सीखना है। ऐसे कोई कोई भक्त जो है कि कितनी दर्शन के लिए बेकुल है। हाँ, जब तो जितना पिए उतना तृष्णा बढ़ रहा है, यही तो भक्ति है। भक्ति और क्या है? एक बार कर लिया, एक बार सोलो माला कर लिया और करने की आवश्यकता, राख दो माला आज का पूरा हो गया कोटा, ऐसे नहीं भाई। सुबह से लेकर शाम तक आज का दिन पूरा अच्छा से नहीं हुआ, अगले जो क्षण जब नाम जप किया वो अच्छा से नाम स्मरण नहीं हुआ कि संसार के विषय का स्मरण हुआ वो ठीक से नहीं हुआ, फिर से करो, फिर से मन लगाओ, फिर से लगाओ, फिर से शुरू करो। आज का दिन ठीक से नाम सुमिरन नहीं हुआ, आज ठीक से और अच्छा से करो। इसी तरह मन को शासित करना है, जो अगले जो नाम जप किया ये नाम जप ठीक से नहीं हुआ और ठीक से करना है, और मन लगा को मन वचन और जो काय मन वचन को एक स्थिर करके, मन को स्थिर करके भगवान को नाम करना है। वही कह रहे जत पिए तत तृष्णा बाड़े निरंतर मुखाम्भ छाड़ी नेत्र ना जाया अंतर। महाप्रभु छोड़ने का मन नहीं कर रहे कि मुझे इस बदन मुख कमल को छोड़ के मुझे जाना नहीं है। ऐ मत महाप्रभु लया भक्तगण। इस प्रकार से महाप्रभु अपने भक्तगण को लेकर मध्यान्ह पर्यंत कहिल श्रीमुख दर्शन। मध्यान्ह काल पर्यंत महाप्रभु नेत्र कमल दर्शन कर रहे हैं। सेद कम्प सृजल बहे सर्वक्षण दर्शनेर लोभे प्रभु करे संबरण। सेद कम्प सृजले करे सर्वक्षण। महापुरुष शरीर से जो सेद जो बूंद पसीना निकल रहा है, कम्प हो रहा है और अश्रु से निरंतर अश्रु बह रहे हैं, आंखों से अश्रु बह रहे हैं। दर्शनेर लोभे प्रभु करे करे संबरण। दर्शन के लोभ से प्रभु इसको संबरण कर रहे, इसको लोगों देखने नहीं चाहते। महाप्रभु इसको छिपाना चाहते कि ये कोई देख ना ले, कोई हमारे इस जो चीज है आंतरिक चीज है इसको कोई झांक ना ले, कोई देख ना ले, इसको महाप्रभु छिपाना चाह रहे। तार मध्य भोग लागे मध्य दर्शन। बीच बीच में भोग लग रहा है कि 12 बजे तक महाप्रभु जगन्नाथ प्रभु के भूखे रहेंगे, सबसे पर्दा खुला रहेगा नहीं, बीच बीच में भोग लग रहे। अब बीच बीच में महाप्रभु उस समय खूब जोर कीर्तन कर रहे हैं। पहले कीर्तन होता था, अभी कीर्तन नहीं होता है। अभी ओ रात के समय ये होता है, गीत गोविंद पाठ होता है एक जगह, पहले जोर कीर्तन होता था। अभी कीर्तन बंद कर दिया। मध्य मध्य भोग लागे मध्य दर्शन, भोगेर समय प्रभु करे न कीर्तन। दर्शन आनंदे प्रभु सब पासरिला, दर्शन आनंदे प्रभु सब पासरिला, भक्तगण मध्यान्ह करते प्रभु रे लैया गेला। भक्तगण मध्यान्ह करते महाप्रभु को लेकर गए कि प्रभु आप चलिए अभी कुछ अपना भोजन करिए। हाँ, सब भक्त मिलकर प्रभु को महाप्रभु को लेकर गए कि प्रभु मध्यान्ह समय हो चुका है, देखिए क्या स्थिति है। आज हम शरीर के लिए मर रहे हैं किंतु महाप्रभु अपने प्रभु के लिए साक्षात श्री कृष्ण कृष्ण के लिए नहीं खाना पीना सब भूल गया। आज हम क्लास नहीं सुनते, कैसे 9 बजे हमें वहाँ पहुँच जाए, ये सत्य घटना यही है हृदय की। किंतु हमारा साध्य यदि स्थिर रहे, साध्य वस्तु अगर ठीक रहे तो साधन साधन जो है हम उसको साधन बना लिया। साध्य साधन देखिए समझे, आजकल भक्ति हो गया साधन, बा कृष्ण दर्शन हो गया साधन, भोग हो गया साध्य। समझे, परिष्कार समझ में आया? आज हमारा भोग सामग्री हो गया साध्य वस्तु, भोग के लिए इस चीज को अपनाना, साधन भक्ति को अपना रहे कि भोग प्राप्ति हो जाए, ये नियम नहीं है। धीरे धीरे से जो नूतन स्तर में है भले वो रहे किंतु कुछ अधिक दिनों के बाद इस चीज को बदलना है कि नाम रूप गुण लीला में मुझे तृष्णा बाढ़े, उसको प्राप्ति के लिए, उसकी प्राप्ति के लिए हृदय में बेकुलता आए, इसके लिए सोचना पड़ेगा कि इस स्थिति अधिक, इस शरीर ज्यादा दिन नहीं रहेगा, इस शरीर एक दिन नष्ट हो जाएगा। अगर शरीर की भोग के लिए शरीर को जिंदा रखे वो मूर्ख है। भोग के लिए सांसारिक द्रव्य के सुख के लिए कि शरीर जीवित रखे वो मूर्ख है। शरीर की जीवित रखना है प्रभु प्राप्ति के लिए, और कोई उद्देश्य नहीं। एक दिन शरीर कोई याद भी नहीं करेगा, किंतु रूप सनातन कितने बड़े परिवार के, कितने धनाढ्य परिवार के, यहाँ आके सूखा पाता सूखा चना चिबा कर कितना महान महान ग्रंथों को लिखन किए, आज उस ग्रंथों का हम सब आस्वादन कर रहे हैं। कुछ मतलब संसार से कुछ लिया नहीं, दिया बहुत कुछ। हमारे गोस्वामीगण संसार से कुछ लिया नहीं, जितना बहुत कम मात्रा में लिया किंतु संसार को बहुत कुछ दिया। और हम सब बहुत कुछ ना जाने कितने अन्न नष्ट किया किंतु भगवान के लिए कुछ नहीं किया, ये सबसे बड़ी दुख है। तो इसके लिए हमारे लक्ष्य हो प्रभु के नाम रूप गुण लीला, साधन हो भोग सामग्री, इसके जितनी आवश्यकता है शरीर जीवित रखने के लिए उतना ग्रहण करके उसी में मन लगाना है प्रभु के नाम रूप गुण लीला में। जीवन में वैराग्य को अपनाना है, वैराग्य जो है ये अनुराग तक पहुंचने के लिए वैराग्य जरूरत है। अगर अनुराग में पहुंचना है जो बीच की जो रास्ता है ये वैराग्य है, जो बीच का जो रास्ता मार्ग है ये वैराग्य का रास्ता है। गोपी सब कृष्ण दर्शन के लिए, देख आज काल देखना जो काल की चर्चा में, काल की लीला में, काल जगन्नाथ प्रभु की जो लीला है, समय समाप्त हो चुका है। एक शब्द में जब द्वारका में स्वयं श्री कृष्ण रहे, अपने पाट रानी बहुत सेवा कर रहे, आज कृष्ण क्या कर रहे कि राधा 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 करके पुकारे, गोपी गोपी करके माने चित्कार कर रहे, तो सत्यभ हम कह रहे कि हम उससे इतना सेवा कर रहे हैं किंतु ये किसकी नाम ले रहे हैं। हाँ, गोपी गोपी राधा राधा कर रहे हैं, तो उसकी लीला काल की लीला है कि सब तैयारी करेंगे, रथ की तैयारी करेंगे कि प्रभु साक्षात श्री कृष्ण बलराम को भेजे थे कि कृष्ण आएंगे जाकर समाचार दो, किंतु कृष्ण आए नहीं। फिर भी दोबारा गए कि फिर कृष्ण कहे कि सब रेडी किए कि पहले बलराम जाएंगे, बीच में सुभद्रा माँ जाएंगे और आखिरी में जगन्नाथ प्रभु जाएंगे। और काल की जो लीला है स्वयं द्वारका से ठाकुर जी वृंदावन धाम आएंगे, एक काल की लीला है। तो आज महाप्रभु दर्शन किए और काल महाप्रभु कुछ दर्शन करके फिर महापुरुष सब भक्त मिलकर जो नीलाचल है, जो द्वारका है, जो उस स्थान से महापुरुष सब मिलकर वृंदावन लेकर आए, किंतु उल्टा रथ नहीं करेंगे, गौड़िया उल्टा रथ नहीं करते, क्योंकि महाप्रभु दुखी करना नहीं चाहते गौड़िया को, भक्त को, क्योंकि राधा रानी से अलग करना नहीं चाहते, राधा रानी से मिलाने की इच्छा है सब भक्तों का, कि प्रभु बहुत दिन से राधा रानी आपसे दूरी है, आप आए दर्शन करिए, किंतु यहाँ से ले जाने के लिए कोई तैयार नहीं होते। हाँ, तो यही काल की लीला आप श्रवण करेंगे, बड़ी दिव्य लीला है, तो यही समाप्त करते हैं। यही बड़ा सुंदर चरित्र है, शिल प्रभुपाद की। निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।